समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस त्यौहार को किसान अपनी फसल पकने की खुशी में मनाते हैं, ये सब हम जानते हैं, और साथ ही अच्छी फसल की कामना भी करते हैं।
वेल यस, हेलो फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, टुडे इट्स बैसाखी, well also known as Vaisakhi or Baisakhi. This heralds the beginning of the Vaisakh month and is widely celebrated as a lively spring festival, well, particularly in Punjab and the northern India. Well, it marks the start of the harvest season, as Farah told you, and is observed with great zeal and enthusiasm by farmers and the local communities. And Farah, well, it's also a time for family reunions, for community celebrations, and for indulgence in festive meals made with the season's fresh produce. Well, let us be thankful for the harvest and the lessons of nature. Baisakhi is a time to sow, love, reap peace and celebrate unity. Well, with this, let's begin our daily news magazine program Aaj Savere, where we have a national and international news. We'll be giving you metro city updates and we'll also provide you historical information related to today.
जी बिल्कुल, और मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, सबसे पहले तो जो है कबूल कीजिए मेरा नमस्कार।
नमस्कार फरहत
जी, और अब आइए शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार जाएंगे, जहां वे हिसार से अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। वे हिसार हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे वहां उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता वाले दीनबंधु छोटूराम थर्मल बिजली संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुनानगर के मुकरबपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे भारतमाला परियोजना के तहत 14 किलोमीटर से अधिक लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच की दूरी एक घंटे कम हो जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे।
India's foreign exchange reserve surged by $10.8 billion, reaching over $676.2 billion in the week ending April 4, according to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India. During the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by over $9.07 billion to over $574 billion. Gold reserves increased by over $1.56 billion, totaling $79.36 billion. Also, special drawing rights advanced by $186 million, reaching $18.36 billion, and the central bank's position in the International Monetary Fund was up by $46 million, reaching $4.46 billion. Well, the US has announced to exempt smartphones and computers imported to the country from the latest tariffs. According to a US Customs and Border Protection notice, the smartphones and computers will be excluded from US President Donald Trump's 10% global tariff on most countries and the much larger Chinese tariffs of 145%. The exemption applies to products entering the US or removed from warehouses as early as April 5. The exemptions also include other electronic devices and components, including semiconductors, solar cells, and memory cards. The move will help tech giants like Apple, which make iPhones and other products in China. The announcement comes after the Trump administration imposed a minimum tariff rate of 145% on Chinese goods imported to the United States.
और शगुन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो तीन दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में लू चलने की संभावना है।
वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पोर्ट्स अपडेट्स फरत। इन आईपीएल क्रिकेट टुडे राजस्थान रॉयल्स विल होस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर फ्रॉम 3:30 PM, वाइल इन द सेकेंड क्लैश ऑफ द डे Delhi Capitals will face Mumbai Indians at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 PM. Well, last night, talking about last night's match, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 8 wickets at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad.
और अब रुक कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट का और महानगरों की खबरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है शकुन आपके पास?
जी फरत, आई विल बिगिन विद चेन्नई हियर। द तंबारम पुलिस कमिश्नरेट इन कोलैबोरेशन विद ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल चेन्नई कंडक्टेड अ हेलमेट अवेयरनेस रैली टू एनहांस रोड सेफ्टी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ हेड इंजरीज। द इवेंट ब्रॉट टुगेदर मोर देन 1,000 बाइकर्स, 500 साइक्लिस्ट्स एंड अ फ्लीट ऑफ विंटेज कार्स। The rally began and concluded at the Indian Maritime University in Uthandi, covering a 16-kilometer stretch on the East Coast Road up to Kovalam Junction and back. The rally was flagged off by Tambaram Police Commissioner Abin Dinesh Modak, who reiterated the commitment to reducing road fatalities. Now, we'll focus on Bengaluru. The Karnataka government has signed a memorandum of understanding in Bengaluru with the Swiss company Hess AG and Hess India to launch on pilot basis a project to provide an electric rapid transit between the twin cities of Hubballi and Dharwad in North Karnataka. This 20 kilometers metro style transit system in the twin city in the state will be similar to those seen in European countries. The transit system will provide eco-friendly, efficient urban transport for Hubballi-Dharwad. This will be a fully electric system that will operate on elevated roads at surface level. It will have a capacity to carry 250 passengers per trip. Chief Minister Siddaramaiah was present during the MOU signing ceremony. He said that the project could be extended to other Tier 2 cities if it succeeds in Hubballi-Dharwad. Now we'll turn our attention to Hyderabad. Hyderabad has unleashed imagination and youthful energy as the city hosted the regional edition of WAM, Waves Anime and Manga Contest yesterday. Organized by the Media and Entertainment Association of India and co-hosted by Telangana VFX Animation and Gaming Association, the event brought together the best of Telangana's emerging talent in anime, manga, webtoons and cosplay. Srikant Sinha from the Telangana Academy of Skill and Knowledge, who was the chief guest, said people should see animation and manga as good careers and the WAM-like events will help encourage the youngsters to take these sectors as their careers.
Through this WAM conference being organized, our endeavor is that we should be highlighting the careers available in animation, gaming, visual effects, in anime, in all the various fields of the AVGC sector or the image sector, so that more and more youth can come up and take jobs in this industry.
Media and Entertainment Association of India Secretary Ankur Bhasin said WAM is a cultural movement that redefines what India can create and export to the world. He said the stories, characters and visions from the country are no less compelling than global hits. He added that Hyderabad has once again proven it is a creative force to reckon with. And now Farhat will share the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है और हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की आपूर्ति करता था। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ के स्रोत और आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में आगे की जांच जारी है। वहीं नई दिल्ली के लाल किला स्थित माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महानाट्य एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति है जो सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणादायक गाथा को जीवित करती है। और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल केंद्र सरकार से दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कानूनी बाधाओं को दूर करने और अरब सागर में लंबे समय से लंबित स्मारक परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के साथ मिलकर कल रेजोनेंट द ईडीएम चैलेंज के लिए चुने गए शीर्ष 10 प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की। 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स के वैश्विक मंच पर ग्रैंड फिनाले में लाइव प्रदर्शन करने के लिए कुल 10 कलाकारों को चुना गया है। ये शीर्ष 10 कलाकार भारत के इलेक्ट्रॉनिक संगीत समुदाय के एक जीवंत क्रॉस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें परिवेश से लेकर उच्च नृत्य संगीत तक की अनूठी ध्वनियां हैं। इस चुनौती का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत उत्पादन और भारतीय और साथ साथ ही वैश्विक उभरती प्रतिभाओं को उजागर करना है और उन्हें आगे लेकर जाना है। और अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति बहाल करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य के अन्य हिस्सों में अशांति की स्थिति में वहां भी बलों की तैनाती की जाएगी। इसने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राज्य अधिकारियों को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 नोडल अधिकारी एडीजी कानून व्यवस्था और सीआईएसएफ संयुक्त रूप से विभिन्न स्थलों पर तैनात किए जाने वाले बलों और पुलिसकर्मियों की संख्या निर्धारित करेंगे। उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को 17 अप्रैल तक अदालत को अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
एंड नाउ फरद, फ्रॉम मेट्रो सिटीज लेट अस टेक आवर लिसनर्स टू नॉर्दर्न स्टेट्स टू शेयर सम इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम देयर, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू बैसाखी।
जी बिल्कुल शगुन।
Well, the festival of Vaisakhi is being celebrated in Punjab with enthusiasm and brotherhood today. The occasion has a religious, cultural and historical value. Whilst it is religiously important, as it was on this day the Khalsa Panth was founded, culturally and traditionally, it is also significant as the festival of harvest. Historically, it is vital as the Jallianwala Bagh massacre also happened on this day in Amritsar. More from our correspondent.
It was on this day in the year 1699, the 10th Guru Shri Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth at Gurdwara Takht Shri Keshgarh Sahib, located in Shri Anandpur Sahib.
Vaho Vaho Gobind Singh, Aape Gur Chela, Aape Gur Chela.
Large number of devotees from across the country and abroad are paying obeisance here and at Shri Harmandir Sahib in Amritsar, besides other Gurdwaras, since early morning and listening to the holy Gurbani. Traditionally, the farmers are celebrating Baisakhi by starting harvesting the golden wheat crop standing in their farms. On this day, the nation also remembers hundreds of those innocents who were massacred by the British officer Reginald Doyle in Jallianwala Bagh in 1919. That killing of the innocents had further ignited the India's independence movement. People from all walks of life are paying tribute to them at the Jallianwala Bagh. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
Now let's talk about Jammu and Kashmir. Let me tell you about Jammu and Kashmir, listeners. The mustard production is expected to record an estimated increase of 36,000 metric tons in comparison to last year's production in Kashmir region. This significant rise in yield is helping reduce the region's dependency on imported mustard oil. Experts say around 40% of the total mustard yield is converted into oil. A report from our Srinagar correspondent.
Farmers across the valley have reported higher yields compared to last year, generating optimism for continued growth in the sector. South Kashmir's Anantnag district leads with highest cultivation among 10 districts of Kashmir Valley. Talking to Akashwani News Srinagar, Joint Director Agriculture Kashmir Sartaj Ahmed said,
140,000 hectare pe hame expected yield hai 143,000 metric tons with an average productivity of 1.02 metric ton. It is because of two main programs. Ek national mission on edible oils hai. Dusra hai hamara holistic agricultural development plan mein promotion of oil seeds.
The expansion in cultivation area and the use of improved mustard seed varieties is being considered major factors for increase in mustard production this year. Tariq Rather, Akashwani News, Srinagar.
और आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
नाउ फोकसिंग ऑन चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और अ थंडरस्टॉर्म। The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain again. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और शगुन, आइए अब इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1796 में, जहां पर नेपोलियन ने इटली की जंग में ऑस्ट्रिया को हराया था। और वहीं 1796 में अमेरिका में पहला हाथी भारत से ले जाया गया। 1849 की अगर बात की जाए तो हंगरी को आज ही के दिन गणराज्य बनाया गया था।
नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर 1870, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट वॉज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। The brainchild of American expatriates in Paris and a number of wealthy New Yorkers, the Met did not put on an exhibition until 1872, but it quickly blossomed into one of the world's premier repositories of fine art, a position it holds to this day.
और आज ही के दिन सन 1919 में एक बेहद दुर्घटना घटी जो आज भी जो याद किया जाता है तो रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की, जहां पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की जिसमें सैकड़ों की जान गई और कई घायल हुए। ये घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ बनी।
Well, in Amritsar, India's holy city of the Sikh religion, British and Gurkha troops, massacred unarmed demonstrators, which were meeting at the Jallianwala Bagh, which was a city park. And on this particular day, the Sikh Baisakhi festival, well, tens of thousands of people, they came to Amritsar from surrounding villages to attend the city's traditional fairs. And then thousands of people, they were unaware of Dyer's recent ban on public assemblies. So they convened, which was convened at Jallianwala Bagh, where a nationalist demonstration was being held. The massacre, also called the Jallianwala Bagh massacre, it stirred nationalist feelings across India. Now talking about the year 1928, German pilot Hermann Kohl, Irish aviator James Fitzmaurice and Baron Ehrenfried Günther Freyer von Hünfeld, the expedition's financier. He completed the first Europe to North America transatlantic flight, taking off from Ireland and landing safely on a small Canadian island. Now talking about the year 1964, Sidney Poitier became the first African American to win the Academy Award for Best Actor, the Academy Award for Best Actor, for his role as a construction worker who helps build a chapel in Lilies off the Field. In the year 1984 now, India won the first Asia Cricket Cup by defeating Pakistan in Sharjah. In 1997, 21-year-old Tiger Woods won the prestigious Masters Tournament by a record 12 strokes in Augusta, Georgia.
और अगर बात की जाए सन 2018 की तो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज ही के दिन घोषणा हुई। श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब आइए अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक चंदूलाल जयसिंह भाई शाह को। उन्हें भारतीय सिने इतिहास की प्रसिद्ध हस्तियों में गिना जाता है। संयोग से ही सही, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद चंदूलाल शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्म पापी 1953 में प्रदर्शित हुई थी। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले।
Well, now let me talk about a novelist, author, critic and playwright, Samuel Beckett. Well, winner of the Nobel Prize for Literature in 1969, he wrote basically both in French and also in English, and perhaps best known for his plays, especially on Attendant Godot, which means waiting for Godot. Beckett's works are known for their existential themes, and these made them an important part of the 20th century plays and dramas. Today it's his birth anniversary.
और अब आज के दिन जन्म हुआ था वर्मा मलिक, या यूं कहें बरकत राय मलिक का। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध गीतकार रहे ये, पंजाबी और उर्दू के लेखक रहे। हिंदी भाषा इन्होंने मुंबई आकर सीखी। उन्होंने पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म में काम किया। वर्मा मलिक ने कटाक्ष वाले गाने हो या फिर दिल की बात कहने वाले गाने हो, सभी को बखूबी लिखा, और उनके कई गाने ऐसे रहे जो लोगों की जुबान पर आज भी चढ़े हुए हैं। तो आइए सुन लेते हैं उनका लोकप्रिय गीत फिल्म धर्मा मूवी से।
राज की बात कह दो तो जान में फिर में फिर क्या हो,
राज खुलने का तुम पहले हो, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।
Also today we are remembering Johnny Clyde Johnson, pianist who played jazz, blues and also rock and roll. Well, his work with Chuck Berry led to his induction into the Rock and Roll Hall of Fame. Well, the inspiration for this particular song that I am about to play, Johnny B. Goode and the greatest blues pianist of his time, it was from Johnny Johnson, is nowhere near renowned as he should be. Well, he was a prodigy since age 4 back, an apprentice to Muddy Waters and the piano giant on whose shoulders Chuck Berry rose to prominence. Well, his musical excellence can be heard in this song which I was talking about, Johnny B. Goode.
जन्म हुआ था हिंदी फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक का।
वेल, ही फाउंड हिज फेम पर्टिकुलरली विद दिस कैरेक्टर विच ही प्लेड इन मिस्टर इंडिया, स्टारिंग अनिल कपूर, श्रीदेवी एंड अमरीश पुरी, वेयर ही प्लेड दिस पर्टिकुलर आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ अ कुक नेम्ड कैलेंडर। सो माई मेमोरी इज विद दिस।
जी बिल्कुल, तो आइए सुन लेते हैं ये।
मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के।
इसके अलावा सतीश कौशिक की पहली बॉलीवुड फिल्म मासूम थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की। फिल्म मासूम में इन्होंने शेखर कपूर को असिस्ट किया। इसी के साथ इन्होंने एक छोटा सा रोल भी वहां पर प्ले किया। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिक कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों में सतीश कौशिक ने अभिनय के साथ डायलॉग लिखे। सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
नाफरत, लेट मी टॉक अबाउट अनदर एक्टर
जी,
Donald James Yami, and professionally he is known as Don Adams. In his 5 decades on television, he was best known as Bumbling Maxwell Smart, the film is Secret Agent 86, and in the television situation comedy Get Smart. And he also sometimes directed and wrote this particular series, which I'm talking about, Get Smart. And he won 3 consecutive Emmy Awards for his performance in this particular series. And he also provided voices for animated series Tennessee Tuxedo and his Tales. And also, Inspector Gadget is one of his very remarkable works.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय व्यंग्यकार और लेखक कलिका प्रसाद सक्सेना को। स्वदेश, लगान, हलचल और जोधा अकबर जैसी फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखने का कार्य इन्होंने किया। वर्ष 2000 में केपी सक्सेना को पद्मश्री और सन 2008 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
Well, today we are also talking about the birthdays. So today is Albert Lyons Green's birthday, known as professionally Al Green, singer, songwriter, also pastor and record producer. Well, he is best known for his recording a series of soul hits. Soul was his genre. So this included Tired of Being Alone. This is his single that I'm talking about, I'm Still in Love with You, and also Love and Happiness. Well, he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in the year 1995, and he's also winner of 11 Grammy Awards, which includes a Grammy Lifetime Achievement Award. So let's listen to his voice, listeners. This is the song Pass Me Green.
और आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय की। वे हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते थे, जिससे हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके। गुलाब राय ने 2 प्रकार की रचनाएं की, दार्शनिक और साहित्यिक। उनकी दार्शनिक रचनाएं उनके गंभीर अध्ययन और चिंतन का परिणाम रही। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध भाषा और परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग अधिकता से किया। आधुनिक काल के निबंध लेखकों और आलोचकों में बाबू गुलाब राय का स्थान बहुत ऊंचा रहा। इन्होंने आलोचना और निबंध दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और मौलिकता का परिचय दिया।
Well, today we are also remembering Balraj Sahni, film and stage actor. Well, very well known for his powerful and impactful performances, he became a prominent figure in the golden era of Indian cinema.
जी बिल्कुल शगुन, बलराज सहनी को एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाता था जिन्हें रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में समान दिलचस्पी थी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। और वर्ष 1953 में बिमल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन बलराज सहनी के करियर में अहम पड़ाव साबित हुई।
Well, his filmography includes a diverse range of roles, variety of roles from intense and dramatic characters to light-hearted and comedic ones too.
जी बिल्कुल, और फिल्म हलचल के ठीक बाद बलराज सहनी को जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का प्रस्ताव मिला। इसमें उन्हें एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बेरोजगार युवक की भूमिका मिली। ये पहली फिल्म थी जिसमें बलराज काफी हद तक अपने रंग में नजर आए और कैमरे के सामने की उनकी जो अड़चन थी वो खत्म सी हो गई थी। हम लोग सफल रही और बलराज के अभिनय को काफी सराहा भी गया। अब वे आर्थिक रूप से भी बेहतर स्थिति में थे। 2 बीघा जमीन में तो उनकी प्रतिभा पूरी तरह से परवान चढ़ी गई थी। वो अपने किरदार के साथ साथ एकाकार हो गए और एक बेहतरीन स्क्रीन अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हो गई। और उसके अलावा उनकी एक और फिल्म एक फूल दो माली काफी लोकप्रिय रही। तो आइए सुन लेते हैं 1969 में आई इस फिल्म से खूबसूरत सा ये गीत।
या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
और इसी खूबसूरत गीतों के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
Also listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is followed by morning news in English at 8:15 a.m. Well, thank you so much listeners for tuning in. We hope you have a wonderful day ahead.
बिल्कुल, और आप सुनते रहिए ये खूबसूरत सा गीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा।